लीडर हैं, उनके भी आपस में फैक्शंस हैं। तो अब कुछ लोग तो आ जाएंगे, लेकिन यह है कि बहुत सारे लोगों का जो है हो सकता है कि वो होल्ड आउट करें और वो इसको रिजेक्ट करें।
लेकिन कामरान, बलूचिस्तान की सूरत हाल इस लिहाज से थोड़ी मुख्तलिफ भी है कि बलूचिस्तान की हकूमत के अंदर जो फैमिलीज बैठी हैं, मैं कहूँगा कुछ नवाब्स, बलोच लीडर्स हैं, वो वहाँ पे जो मौजूद हैं, उन्हीं के ख़ानदानों में से कुछ लोगों ने असलहा या हथियार उठा रखे हैं और वो पहाड़ों के ऊपर मौजूद हैं। तो ये एक तरह से उनको कनेक्ट भी, एक कनेक्शन भी तो बड़ा मजबूत है उनके दरमियान कम्युनिकेशन का।
जी देखिए ना, ये जो ट्राइबल सिस्टम है ये मजीद प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में, जिस लैंडस्केप में ट्राइब जो है वो हायरार्की में शामिल है, तो ट्राइब के खिलाफ जाना जो है, जो ट्राइबल लीडरशिप के मातहत लोग होते हैं, वो इवन अगर वो उस ट्राइब से हैं और बड़े ही मतलब सीनियर पोजिशन में है ट्राइब के टोटम पोल में, तो वो उनको क्यादत की मुखालफत करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये जाहिर है ये एक रास्ते की रुकावट है। लेकिन अगर हकूमत ने, अब मुझे ये नहीं पता कि हकूमत ने क्या देख के तो ये आम माफी का ऐलान किया है, आम माफी जो है उसको पोलिटिकली भी अगर देखा जाए तो वो एक तरह से पोलिटिकली इनसेंसिटिव भी होती है, कि वो आप ये कहा जाता है कि जी आप गलत रास्ते पे थे तो आप जो है अब राह रास्त पे आ रहे हैं तो चलें हम आपको कबूल कर लेते हैं। तो ये दूसरी साइड जो है वो नहीं चाहती कि वो उसका पलड़ा नीचे हो, वो चाहती है कि उसको इक्वल के तौर पे या कम से कम इक्विटेबल टर्म्स पे डील किया जाए।
सही,
तो अब अगर आप जो है एक माफी तो एक बात है, लेकिन साथ साथ एक पोलिटिकल डील होना भी जरूरी है।
ठीक। वो हम देखते हैं कि पॉलिटिकल डील हो पा रही है या उसका ये नुक्ता या आगाज है। संगीन शाह साहब, आपने इस डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने असलहा या हथियार उठा रखे हैं, उनकी क्यादत, खास तौर पे जो नौजवान क्यादत है, वो यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद है। किसी सतह पे उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स या कुछ इशारे वो भी आते होंगे जो आपकी नज़र में होंगे। तो आपके ख्याल में हालात बलूचिस्तान के अंदर एक एमनेस्टी के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो आगे चल के पुरअमन एक माहौल क्रिएट कर सकते हैं, या तैयार हो चुके हैं और ये बेहतर एक इनिशिएटिव है?
जहाँ तक इस इनिशिएटिव का ताल्लुक है, ये तो बगैर किसी सोचने कहूंगा कि ये इंतहाई अच्छा इनिशिएटिव है,
सही।
क्योंकि आप कभी किसी के गुस्से को, क्योंकि लोग अगर कहीं दहशतगर्दी की हरकतों के ऊपर आना या किसी की इंसर्जेंसी या कोई और ऐसे इकदाम जिसमें वायलेंस इन्वॉल्व हो, कोई खुशी से नहीं करता। ये इकदाम लोग तब उठाते हैं जब उनमें गम होता है, उनमें गुस्सा होता है और उन्हें नफरत होती है।
नौजवान उनको आप भटका के और उनको ये कहें कि आप जाएंगे
जी,
तो
आप
आप आजादी के
बात कीजिए।
लिए
गालबन ये हमारे कुछ,
हेलो
जी, संगीन शाह साहब
आप मुझे जारी रखना
जी,
देंगे?
आप जारी रखिएगा जी। हम
तो इन वजूहत की वजह से अगर किसी में गम गुस्सा होता है, चाहे वो गम गुस्सा मजहबी बुनियाद के ऊपर हो या वो गम गुस्सा किसी नस्ली बुनियाद के ऊपर हो, लिसानी बुनियाद के ऊपर हो या किसी और माशी बुनियाद के ऊपर हो, कि जहाँ पे एक ग्रुप ये महसूस करे कि उसको माशी तौर पर दूसरे ग्रुप से बेहतर नहीं है, इन बुनियाद पर ग्रुपों के अंदर गम गुस्सा पैदा होता है और उस गम गुस्से को फिर उन ग्रुप के लीडर जो होते हैं वो उस गम गुस्से को यूटिलाइज करते हैं और उनसे उन उस एक गम और नाराजगी को गुस्से में तब्दील करते हैं और गुस्से को फिर वो नफरत में तब्दील कर देते हैं और उस नफरत को फिर वो कहते हैं कि इस नफरत का इजहार जो है तुम जो जारहियत के साथ करो या वायलेंस के साथ करो या टेररिज्म के जरिए इस नफरत का इजहार करो। तो इस सारे प्रोसेस के दरमियान में टारगेटिंग होती है, एक जो लोगों में नाराजगी और होती है उसको उसको गम में तब्दील किया जाता है, गम को गुस्से में तब्दील किया जाता है, मगर गुस्से के कोई डायरेक्शन नहीं होती। आपको ये नहीं पता होता है कि गुस्सा मैं किसके ऊपर निकालूं, तो इस गुस्से को डायरेक्शन देने से को दी जाती है और इस गुस्से को नफरत किया जाता है।
सही, लेकिन क्या अब इस गुस्से को कंट्रोल किया जा रहा है इस इनिशिएटिव के जरिए, और इस मैसेज को कबूल किया जाएगा आपके ख्याल में?
गुस्से को तो कंट्रोल तब किया जाएगा कि जब दूसरी साइड ये अपने आप को वो करे, अपने अपना माने कि हाँ हमारी तरफ से भी कोई गलती हुई है, तब गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है, फिर इससे गुस्से को कमी, क्योंकि अगर कोई एक दूसरा तरफ का जो ग्रुप है वो मान ले कि हाँ ये चार चीजें जो है इसमें हम मानते हैं कि हमारी गलती है, आपने जो तरीका इख्तियार किया था वो दुरुस्त नहीं था, वो आप मान ले कि आपने वो तरीका गलत किया, गलत तरीका इख्तियार किया था अपने गुस्से के इजहार के लिए, आप हथियार फेंक दें, उसके बदले में हमने जो गलतियां हमसे जो कोताहियां हुई हैं माजी में हम उसका मदावा करेंगे, तो ये एक ऐसी सूरत हाल होगी कि गुस्से को कंट्रोल किया जा सकेगा।
जी कामरान बुखारी साहब और संगीन शाह साहब हमारे साथ रहेगा कुछ वक्त के लिए, मैं सरफराज बुगटी साहब ने ज्वाइन किया है होम मिनिस्टर बलूचिस्तान के, और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला है। सरफराज बुगटी साहब ये बताइएगा, ये जो आपने पेशकश की है बुनियादी तौर पर इससे पहले आपके रबते हैं या ये एक पेशकश कर दी गई है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर और उसके बाद आप इंतजार करेंगे रिस्पॉन्स का, किसी सतह पे कोई कम्युनिकेशन है खासतौर पे उन लीडर्स के साथ जिन्होंने हथियार उठा रखे हैं?
देखिए जो उनके लीडर्स हैं इन रॉ 100 लश्करों के, खुद तो यूरोप में बैठे हुए हैं और उनका मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिया था और प्रोविंशियल कैबिनेट ने डॉक्टर अब्दुल मालिक गलोच जो हमारे वजीर आला हैं उनको दिया है।
सही।
तो इसके बारे में वो बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि उनके रास्ते हैं या नहीं है, लेकिन एक चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये सेकंड टीयर लीडरशिप उनकी हथियार डाल रही है और जिस तरह हमारे साथ और भी उनके बहुत सारे लोग रास्ते में हैं जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कमिंग फ्यूचर में आपके सामने भी आएगा कि वो हथियार डाल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये वो रियलाइजेशन है कि वो रियलाइज कर रहे हैं कि उनके जो लीडर्स हैं वो तो स्विट्जरलैंड में यूरोप में बैठे एक पुरतकल्लुफ जिंदगी गुजार रहे हैं और लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं जबकि मासूम दलितों को वर्गला कर पहाड़ों पर बिठाए हुए लड़ने के लिए, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव साइंस है। और इसी चीज को सामने रखते हुए इससे पहले भी देखें हमारी तो फ्रॉम द डे फर्स्ट ये पॉलिसी है कि हम डायलॉग पे बिलीव करते हैं, हम पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम ये समझते हैं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में अगर वो डायलॉग से रिजॉल्व होता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ देयर मस्ट बी अ टाइम फ्रेम फॉर डायलॉग और उसी की तरफ हम जा रहे हैं कि हमने एक पैकेज अनाउंस करना है जो हमने अनाउंस किया है फर्स्ट कम फर्स्ट रिजर्व, जो पहले आएगा उनको पैकेज दिया जाएगा। और
अच्छा मैं जो समझ सका हूँ आप ये फरमा रहे हैं कि जो सेकंड टीयर लीडरशिप है यहाँ पे मौजूद या जिन लोगों ने हथियार उठा रखे हैं आप डायरेक्टली उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं और जो लीडरशिप उनकी यूरोप में मौजूद है उनके साथ बज़ाहिर लग रहा है कि कोई ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं है, लेकिन ये जो एमनेस्टी की ऑफर है आम माफी की ऑफर है ये उस लीडरशिप के लिए भी है जो यूरोप में मौजूद है?
जी उनके साथ भी मैंने आपको कहा कि वो रबते का जो वो है वो हमारे ऑनरेबल सीएम है और इसी में उनके बैक डोर पे कहीं ना कहीं उन लीडरशिप से भी रबते जरूर हैं और लेकिन ये कि वो उनके लिए भी ये आम माफी का ऐलान है, जो भी आना चाहता है वो फ्रेमवर्क जो है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बॉटम लाइन इज पाकिस्तान और उसके अलावा जो भी आना चाहे हम वो डायलॉग के लिए उनके साथ तैयार हैं, कोई भी किसी की ग्रीवेंसेज हैं उनको एड्रेस करने के लिए तैयार है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि स्टेट अपनी रिट एस्टेब्लिश करेगी, हम किसी को वॉलेंस करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं कि बीच में जब तक हम साथ साथ डायलॉग भी कर रहे हैं तो साथ अगर कोई इस गलत फहमी में रहे कि वो वॉलेंस करेंगे और हमारे मासूम लोगों को शहीद करेंगे तो वो इस गलत फहमी में ना रहे, हम उनको स्ट्राइक करेंगे और इंशाल्लाह सख्ती से निपटेंगे।
तो आप हाँ जैसे एक तो है आम माफी, आम माफी से मुराद ये है कि ठीक है वो सोसाइटी में आ जाएं हम उनको हेल्प करेंगे, लेकिन एक इशू जो है ग्रीवियंसेस का जिसका आपने भी तस्करा किया है क्या उसको भी एड्रेस किया जाएगा और इसके लिए आपकी एपेक्स कमेटी, ये तो सवाल शायद ना बने क्योंकि हम तो सिविलियन और फौजी की आदत दोनों वहाँ पे एक एक प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और जो भी फैसला वहाँ से आता है हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि वो बड़ा एक इत्तेफाक राय से सामने आया है, लेकिन क्या ग्रीवियंसेज हैं अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं उनके सबसे बड़े मुतालबात हैं क्या और क्या रियासत वो मुतालबात कबूल करने के लिए तैयार है?
देखिए अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो मैं समझता हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद कोई ऐसी ग्रीवेंसेस है नहीं जो एड्रेस होना रह गई है फेडरेशन के साथ, और अगर उनके जो मुतालबात हैं जो वो हम टीवी चैनल्स पे देखते हैं या अखबारात में देखते हैं कि खुदा ना खास्ता वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं और रॉ 100 लश्कर बना के पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं उसकी तो इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं खुद उस एपेक्स कमेटी का मेंबर हूँ और मैं आपको बड़े उसमें बता रहा हूँ कि हम सब इस कंसेंसस पे हैं कि जी अगर वो आना चाहते हैं हम आम माफी उनको देंगे, हम उनको रिहैबिलिटेट करेंगे, हम उनको सरकारी मुलाजमत देंगे और उनके उनकी आबादकारी में उनकी मदद करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि पाकिस्तान तोड़ने की इजाज़त दी जाए, उनके गैर आइनी और गैर कानूनी कोई भी मुतालबा होगा उसको नहीं माना जाएगा।
अभी तक आपको क्या रिस्पांस मिला है, कितने लोगों ने हथियार फेंका है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं पिछले एक महीने से और हमने ये सवाल अपने एक पैनलिस्ट कामरान बुखारी साहब से भी किया था, आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आपके लिए बज़ाहिर इसमें आसानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं उनके बहुत करीबी अजीज हैं जिन्होंने हथियार उठाए रखे हैं या जो यूरोप में मौजूद हैं, तो वो एक बेहतर लिंक साबित हो सकते हैं?
देखिए जो लोग यहाँ पर हैं उनके अजीज रिश्तेदार अगर वहाँ पर हैं तो ये ट्राइबल सोसाइटी की डायनेमिक्स है, इनको समझना जरूरी है, लेकिन उनका ये मतलब कतन ना लिया जाए कि अगर वो यहाँ पर हैं तो खुदा ना खास्ता उनकी अफिलियेशन उनके साथ है जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जरूर है कि बाद औकात इस तरह के जो रबते होते हैं, इस तरह के जो कॉन्टेक्ट होते हैं, इंटर फैमिली कॉन्टेक्ट होते हैं, इंटर ट्राइबल कॉन्टेक्ट होते हैं, वो फिर उनको ये कायल कर रहे हैं कि हमारे लिए मददगार साबित होते हैं कि प्लीज कम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पर वापस आकर जो बलूचिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें और अपना किरदार अदा करें।
बहुत शुक्रिया आपका सरफराज बुगटी साहब, होम मिनिस्टर बलूचिस्तान, आपने हमें ज्वाइन किया, अपनी मसरूफियत से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कामरान बुखारी साहब, आपने उनकी गुफ्तगु सुनी है, एक तो वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ आम माफी नहीं है, उनके जो ग्रीवियंसेज हैं जो जायज़ हैं हम उनको अकोमोडेट भी करेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि हुकूमत अपनी या रियासत अपनी रेट उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी।
देखें रियासत तो मैं फिर वही अपना एक थियोरेटिकल लेवल पे जाके बात करूंगा कि कोई भी रियासत जो है जब वो नॉन स्टेट एक्टर से डील करती है तो उसका मकसद होता है कि अपनी जो रियासत की जो फेडरेशन है, जो उसकी इंटेग्रिटी है, उसको बचाना। तो ये तो एक रेड लाइन है, ये तो मतलब एक नॉन चीज है, मतलब इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अगर इस थ्योरी से हट के तो ग्राउंड रियालिटी को, जो जियोपोलिटिकल रियालिटी है उसको देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि उस रियासत को शायद तोड़ने वाले जो है कम हो, लेकिन उस रियासत को मानने वाले भी उससे ज्यादा हैं, जो रियासत को नहीं मानते वो उससे ज्यादा हैं। तो इसी वजह से उन्होंने हथियार उठा रखे हैं। अब उनको किसी तरीके से इंटीग्रेट करना, अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ मुआशी तौर पे इंटीग्रेट नहीं करना है, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा जी कि उनको नौकरियां दी जाएंगी ये वो वगैरह, देखें वो एक लेवल की बात है। पहले तो ये है कि वो डिसआर्म क्यों करें।
सही,
कोई भी ग्रोथ डिसआर्म तब करता है जब उसको ये गारंटी हो कि अगली साइड क्रेडिबल कमिटमेंट कर रही है।
सही,
ठीक है, कि उनको यकीन हो कि जब हम हथियार जो है फेंक देंगे तो हम जो है बेसिकली कमजोर नहीं पाए जाएंगे और हमें जो है इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये जो प्रोसेस है ये मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। तो ये चीज जब तक यकीन दहानी ना हो, और ये बहुत मुश्किल होता है किसी भी सिनेरियो के अंदर जहां एक रियासत जो है गैर रियासती इदारे के साथ, मुसल्ला गैर रियासती इदारे के साथ बातचीत भी होती है, क्योंकि एक अदम एतमाद होता है जो है और वो बहुत इंटेंस होता है।
सही,
तो इसको ओवरकम करना जो है मैं समझता हूं कि पूरे के पूरे मुहिमे को हल करने में अदम एतमाद जो है वो एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है। आपको उसको किस हद तक दूर कर सकते हैं, कमी उसमें किस हद तक ला सकते हैं, वो फिर डिपेंड करे, वो फिर सारी बाकी सारी चीजों को वो शेप करता है।
संगीन शाह साहब, ये बताइएगा, एक गिला जो किया जाता है, बहुत सारे एनालिस्ट ये कहते थे कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है खासतौर पे उन इलाकों के अंदर जो शोरेज ज़्यादा है वहाँ पे उसका किरदार कुछ ज़्यादा वाजे नहीं है कि अल्टी वो चाहती क्या है। एलिगेशन ये भी रहे कि एक तरफ तो मिलिटेंट्स के साथ या मुख्तलिफ ग्रुपों के साथ लड़ाई होती है, दूसरी तरफ किसी सतह पर कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है। अब ये तासुर लिया जा रहा है, बहुत सारे एनालिसिस पे बिलीव करते हैं कि इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है अक्रॉस द बोर्ड फाटा से लेके कराची तक बलूचिस्तान के अंदर, उसमें जो किरदार है वो जो सामने नजर आ रहा है पस मंजर में भी वही है। आपने क्या तासुर लिया है अगर बलूचिस्तान के हालात को सामने रखते हुए इसको एनालाइज करें तो?
जी बिल्कुल, इस वक्त जो कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो मैं अगर आप देखें पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान आर्मी तीन किस्म की जंगों में उलझी हुई है। एक जंग जो है वो जो जो मगरब की सरहद के ऊपर हमारे जो के फाटा में हो रही है और बलूचिस्तान की साइड पे जो हो रही है, एक जंग कराची में जारी है जिसमें पाकिस्तान के अंदर मौजूद करप्ट अनासर के खिलाफ जो इनकी जंग हो रही है, और तीसरी जंग जो इनकी हो रही है पाकिस्तान के अंदर जो कि बाकी और सियासी ऐसे अनासर हैं जिनकी आपस में जो खाड़ पिछाड़ हो रही है उसके दरमियान में इनका एक रोल है पाकिस्तान आर्मी की, तीसरी जंग उनकी है। तो जहां पे अगर आप इन तीनों जंगों में देखें तो एक साफ वाजे ये नजर आता है कि पाकिस्तान की फौजी क्यादत ने एक बहुत क्लियर रास्ता इख्तियार किया है, उनकी उसकी सोच में कोई तजाद नहीं है, उनके कॉल ऑफ फेल में कोई तजाद नहीं है, और उसके बाद वो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की मफाद के लिए एक जंग लड़ रहे हैं।
तो ये फिर जंग जीतने के इम्कान बढ़ जाते हैं, कामयाबी मिल सकती है।
देखें आपकी आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो आपकी अपनी फौजी है और दूसरा आपका दुश्मन है। अगर आपकी अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद होगा, एक तो आपकी अपनी फौज ही नहीं समझ पाएगी कि मैं क्या करूं, मुझे कहां पे लड़ना है और कहां पे किसके साथ मुझे किसके ऊपर वार करना है और किसके ऊपर वार नहीं करना है। एक तो आपकी अपनी फोर्सेज के अंदर एक यूनिटी पैदा हो जाती है, उनमें क्लैरिटी ऑफ माइंड आ जाती है, उनको स्ट्रेटेजिक गोल्स का पता चल जाता है कि मेरे स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है। दूसरा आपके दुश्मन को भी ये पता चल जाता है कि अब मुझे आपकी जो 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 मेरे मद मुकाबिल की سوچ اور فکر میں کوئی تضاد نہیں ہے, وہ میرے پیچھے آ رہا ہے اور اس کے یہ اقدامات کرنے ہیں. اور اس کے ساتھ جیسے کہ جن سوالات کے اوپر آپ ہم سے پوچھیں بلوچستان کے لحاظ سے, یہ بھی ایک بہت کلیئر کٹ ایک انڈیکیشن ہے کہ ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں. اس میں آپ کو کوئی شک, جیسے کہ آپ کے ایک بلوچستان کے وزیر صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کو توڑے گا ہم اس کے اوپر خاموش رہیں گے, ہم ان کے پیچھے آئیں گے. اگر آپ اپنے ان کرتوت سے باز آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس معافی کے اور آپ کو گلے لگانے کے دروازے بھی کھلے ہیں. آپ آئیں, ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کریں گے. اگر آپ ہمارے ساتھ لڑنا چاہیں گے, یہ آپ نے راستہ اختیار کیا, یہ آپ کی چوائس ہے, تو ہم آپ کو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. تو یہ بہت کلیئر کٹ جواب ہے اور میرے خیال میں ایک بہت قابل احسن بات ہے, جو کہ بہت عرصے بعد
کوئی ایمبیگوئٹی نہیں ہے میسج کے اندر, خواہ وہ فاٹا کے اندر ہو, وہ کراچی کے اندر ہو, وہ بلوچستان کے اندر ہو, میسج میں بظاہر کوئی ایمبیگوئٹی نظر نہیں آتی.
یہ سیگمنٹ کو میسج میں کوئی ایمبیگوئٹی نہیں ہے اور جو ان کے فیل ہیں وہ بھی ایک بہت سیکوینس کے ساتھ آگے جا رہے ہیں.
اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. نصر اللہ برائے صاحب, ان کے کمنٹس کے ساتھ, چیئرمین ہے سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, بلوچستان بیسڈ ہیں. برائے صاحب آپ بتائیے گا, آپ کو ہم نے کافی دیر انگیج بھی رکھا ہے, آپ نے سنا بھی ہمارے پینلسٹ کی بات بھی اور ہوم منسٹر کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے, آپ اپنا انڈیپینڈنٹ انالیسز اور آبزرویشن شیئر کیجیے گا. پچھلے کچھ ہفتوں سے مختلف کمانڈرز جو ہیں فراری کمانڈرز وہ ہتھیار پھینک رہے ہیں, اس آفر کے بعد اس میں کیا تیزی آ سکتی ہے, کیا تبدیلی آ سکتی ہے, اور جو یہاں پہ ایک کنسنسس پایا جاتا ہے کہ اس وقت آرمی اسٹیبلشمنٹ ملٹری لیڈرشپ اس کا جو میسج ہے وہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, اس میسج کو اسی طرح سے لیا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر؟
بہت شکریہ. میرے خیال میں جہاں تک میسج کی بات ہے, یہ واقعی کلیئر ہے کہ یہاں کی اپیکس کمیٹی اور یہاں کے جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپنے ان کا جو میسج ہے وہ بہت کلیئر ہے کہ ریاست ہر وہ قدم اٹھائے گی جس میں یہاں اسٹیبلٹی کی بات ہو. میں بیسیکلی اس میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں بھی اس قسم کی انسرجنسی کہیں یا اس قسم کے لوگ ہتھیار کیوں اٹھاتے ہیں,
جی
بلوچستان کا اپنا ایک پس منظر ہے اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ اس ملک کے بننے کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے اور آج تک, اگر آپ 70s میں دیکھیں, اگر آپ آج کے حالات دیکھیں, اگر اس سے پہلے کی آیوب ہیرا کے حالات دیکھیں, بلوچستان میں دو چیزیں بہت واضح ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی, بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے, میں اگر اس کو ایک دو جملوں میں ایکسپلین کروں, جہاں سے سونا نکلتا ہے وہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ رہنے والے لوگ آج بھی جوڑ کے پانی پیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں بے روزگاری غربت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. جو میرے خیال میں وجوہات ہے اس تمام بلوچستان کی سرجنسی کے میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں.
صحیح. عام معافی کے ساتھ آپ کو کیا پیکج میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ گریوینسز ان کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے یا ارادہ نظر آتا ہے اس کا؟
مجھے نہیں نظر آ رہا ہے اس میں, کیونکہ یہ تو ورحال بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کی بات ہے, بلوچستان میں روزگار کے مواقع کو پیدا کرنے کی بات ہے, یہاں کی نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کی بات ہے, یہاں کے لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات فراہمی کی بات ہے, اور یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہاں کے گورننس کے ساتھ. جب تک یہاں کے گورننس امپروو نہیں ہوگا, جب تک یہاں کا جو پسماندگی ہے, جو یہاں کی بے روزگاری ہے, اس میں کمی نہیں لائی جا سکے گی, تو شاید یہ پیکیج ادھورا رہے.
آخری اس کو سوال اور اس کو سم اپ کیجیے گا. اب سے کچھ برسوں پہلے تک, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, یا کچھ مہینے پہلے تک ایک بات کی جاتی تھی کہ بلوچستان کے اندر وہ سوچ زیادہ پروان چڑھ رہی ہے جس میں کہ پاکستان کے قومی ترانے تک کو گانے سے گریز کیا جاتا ہے, اب اس میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟
میرا خیال کافی تبدیلی آئی ہے, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ ریاست کے خلاف ہیں یا پاکستان کے خلاف ہے. اس کی اپنی ہر دنیا کے تمام طریقوں کو اگر آپ دیکھیں, ان کی اپنی وجوہات ہوتی ہے, اور ان وجوہات کو ایڈریس کرنا ریاستی اداروں خصوصاً حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. جب آپ کی گریونسز کو, جب آپ کی مسائل کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے, تو اپنے آستے آستے اپنے ورس شکل میں پہنچ جاتی ہے. تو میں بلوچستان کی صورتحال کو بھی اسی پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں کہ بلوچستان میں جب تک یہاں کے لوگوں کے مسائل اور خصوصاً یہاں کے نوجوانوں کو یہ باور نہ کرائے جائیں کہ آپ
ریاست ان کے پیچھے کھڑی ہے, اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے.
Exactly.
بہت شکریہ آپ کا نصر اللہ خان برائے صاحب, چیئرمین سینٹر فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سرفراز بگٹی صاحب, ہوم منسٹر بلوچستان, آپ ہمارے ساتھ رہے اس سیگمنٹ میں, آپ کا بہت شکریہ. کامران بخاری صاحب اور سنگین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروگرام کے اگلے حصے میں, جس میں ہم بات کریں گے پاکستان, جس کا شمار آج بھی ان ممالک کی فہرست میں انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا جو امن پسند ممالک میں یا جن ملکوں میں امن ہے اس انڈیکس میں اوپر ہیں. پاکستان کا شمار بہت نچلے نمبروں پر ہے. کیوں ہے؟ اس کے باوجود کہ وہاں پہ ایک بڑا اگریسو آپریشن ہو رہا ہے ملٹنٹس کے خلاف, اس نمبر کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم اگلے سیگمنٹ میں اپنے پینلسٹ کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. یہ پروگرام آپ وائس آف امریکہ سے براہ راست سن بھی رہے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر ہمارے ریڈیو کے لسنرز, اور یہ پروگرام آپ براہ راست دیکھ بھی رہے ہیں وائس آف امریکہ کی ہماری اردو کی ویب سائٹ urduvoa.com پہ, اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ پہ بھی. اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے ایک انسٹیٹیوٹ فار اکنامک اینڈ پیس, اس کی ایک انڈیکس پہ جس میں انہوں نے پاکستان کو ریٹ کیا ہے ایسے ممالک کی فہرست میں جو امن جن ملکوں میں پایا جاتا ہے اس فہرست میں وہ بہت نچلے نمبروں پر ہے. 162 میں سے پاکستان کا جو نمبر ہے وہ اگر میں آپ کے سامنے رکھ سکوں, وہ پاکستان کا نمبر اس میں 156 ہے, یعنی لیسٹ پیسفل ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے اور نیچے سے 9 نمبر پر ہے. بھارت کا شمار اس فہرست میں 30 پہ ہے اور ایران جو ہے وہ 35 نمبر پر ہے, اور جو ورسٹ ملک ہیں امن کے اعتبار سے سیریا اس میں سب سے نیچے ہے, یعنی بدترین امن رکھنے والے ملکوں میں سیریا ایک طرح سے پہلے نمبر پہ ہے, اس کے بعد عراق, اور پھر تیسرے نمبر پہ افغانستان آتا ہے. پاکستان اس فہرست میں 9 نمبر پر ہے, اور اس فہرست کو یا اس رپورٹ کو جو تشکیل دیا گیا ہے وہ 2014 کے اعداد و شمار پہ ہے. ہمارے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ 2015 میں حالات کافی تبدیل ہو چکے ہیں پاکستان کے لیے, اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ جب 2016 میں ہم اس انڈیکس کو دیکھیں گے تو پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوگی. اور اس کی جو بنیاد بنائی گئی ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے اندر اس میں کیجوالٹیز, نمبر آف کیجوالٹیز کی وہ مین کرائیٹیریا نہیں ہے اس ریٹنگ کا, بلکہ یہ کہ کتنے ہائی پروفائل اٹیکس ہوئے ہیں. پاکستان اس لیے نچلے نمبروں پہ ہے کیونکہ اس میں دو بڑے سال 2014 میں حملے جن کا ریفرنس دیا گیا ہے, ایک تو December 16 بہت سانحہ پشاور جس میں آرمی پبلک اسکول کو اٹیک کیا گیا, اور اس کے بعد ایک جناح ایئرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس پہ حملہ کیا گیا. تو یہ ہیں, اور آئس لینڈ وہ دنیا کے انتہائی پرامن ترین ممالک میں شامل ہیں. اگر خطوں پہ نظر ڈالیں تو یورپ آج بھی پرامن ترین خطہ ہے. یہ ہے انڈیکس, اس کے کچھ پوائنٹس ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور ایک اور جو گیج تھی وہ یہ لگائی گئی تھی کہ اندرونی تنازعات کس نوعیت کے ہیں, کتنے سویئر ہیں, اور ان کو ایڈریس کرنے کے لیے, ان کو ڈیل کرنے کے لیے کس طرح کا ویپن موجود ہے, کس طرح کی کتنے وسائل موجود ہیں, یہ بھی اس کی ایک کہنا چاہیے گیج تھی. کامران بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سنگین شاہ صاحب. کامران بخاری صاحب, کوئی حیرت ہوئی آپ کو اس رپورٹ کو دیکھ کے؟
حیرت نہیں ہوئی. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کچھ ایسے رہے ہیں کم از کم سن 2007-06 اگر شروع کیا جائے, اور پچھلے سال تک اگر لیا جائے تو اس میں پاکستان جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ جو جہادسٹ انسرجنسی ہے بین الاقوامی پیمانے لیول پہ, اس میں جو ہے وہ اس ایک سینٹرل لوکیشن تھی, ایک آلموسٹ جو ہے جو پلانٹ کا جہادسٹ سینٹرل کہا جا سکتا ہے. تو اس وجہ سے تو مجھے حیرت نہیں ہوئی. ایک اور وجہ یہ ہے کہ یہ جو اعداد و شمار کیے بھی جاتے ہیں نا کرائیٹیریا جیسے آپ نے بیان پر, اس میں یا نمبر آف کیجولٹیز ہوتی ہیں, نمبر آف ہائی پروفائل ٹارگیٹس ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک اور چیز ہے جس کی وہ یہ ہے کہ یہ جو کرائیٹیریا ہے یہ باقی چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیتا ہے. جیسے اگر کوئی شخص جو ہے اگر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہر وقت ہر جگہ حملے نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے, ملک کا بیشتر حصہ ایسا ہے کہ جہاں پر مسائل ہیں لیکن وہ مسائل ان کا وائلنس سے تعلق نہیں ہے, ان کا معاشری انفراسٹرکچر سے پرابلم ہے, تعلق ہے
گورننس سے,
توانائی سے پرابلم ہے, گورنمنٹ سے ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اور لالسنس بھی ضرور ہے لیکن وہ انسیکیور نہیں کہلاتے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی جو انڈیکس ہے वो एक मुल्क को जो है पूरी तरीके से उसको जो है वो अप्रिशिएट नहीं करती है कि भाई वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत सारी आबादी अगर आप जो है ना जगहों पे चले जाएं तो आपको नजर आएगा कि जिंदगी जो है वो रवां दवां है, लोगों के मसाइल हैं, वो उनके साथ डील कर रहे हैं, लेकिन उस तरह जो है वो कोई खाना जंगी जो है कि सूरत हाल नहीं है। इसी वजह से अगर देखा जाए तो सीरिया जो है उसका आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ, या इराक का कैसे कर सकते हैं, या अफगानिस्तान का कैसे कर सकते हैं। तो
सही
ये जो रैंकिंग है मैं समझता हूँ कि ये एक थोड़ी सी डिसप्रोपोर्शनेट भी होती है।
जी संगीन शाह साहब, क्या ये रैंकिंग डिसप्रोपोर्शनेट है या हकीकत के बहुत करीब है आपके ख्याल में? नाइजेरिया वो भी पाकिस्तान से बेहतर पोजीशन जो है वो एंजॉय कर रहा है इस इंडेक्स में।
जहां तक का ताल्लुक है, ये मैं आपके दूसरे अपने फाजिल साथी के साथ मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा, आदाद और शुमार और हकीकत में अक्सर बहुत तजाद भी हो सकता है। फिगर्स को लेकर कोई अगर देखे और सिर्फ ये गिनती करे कि कितने दहशतगर्दी के हरकत में वारदातें हुई हैं पाकिस्तान और उन्हें कितने लोग जख्मी और शहीद हुए, अगर इनको एक लेकर एक तरफ पे रखे और हालात की संगीनी को, मुल्क की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को इनको दूसरी तरफ पे रखे तो बहुत बड़ा तजाद है। आप पाकिस्तान के मेरे ख्याल में मासिवाय फाटा के, और मासिवाय फाटा में भी चंद फाटा के इलाकों के, बाकी सारे पाकिस्तान में अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है आप पुलिस के पास जा सकते हैं। पुलिस आपकी जो भी जो कि डेवलपिंग कंट्री की जो पुलिस की जो हालत होती है उस हालत के मुताबिक वो आपकी कोई ना कोई इमदाद जरूर करेगी। ना इसमें इराक की तरह का सूरत हाल है जहाँ पे इराकी हुकूमत के मुल्क के बेशतर हिस्सों के ऊपर कोई कोई काबू नहीं है, ना ही अफगानिस्तान की तरह की सिचुएशन है और ना ही ये सीरिया।
यानी जो रियासत के बुनियादी टूल्स हैं वो इन प्लेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे आप बात कर सकते हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं,
बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं। अगर अफगानिस्तान बरतानिया की सरहद के ऊपर होता तो फिर बरतानिया की भी आज यही हालत होती। अगर अफगानिस्तान अमेरिका की सरहद के ऊपर होता तो फिर अमेरिका में भी यही हालत होती। कोई भी ये नहीं कह सकता कि कोई शख्स एक अपने आप को लेकर अपने आप को खत्म करने का इरादा कर ले और अपने साथ बम बांध ले उसको कोई रोक सके, का कोई भी नहीं रोक सकता। अगर अमरीका और बरतानिया और बाकी मुल्कों में अगर हालात जरा से बेहतर हैं तो सिर्फ इस वजह से बेहतर हैं कि वो इन अफगानिस्तान, इराक और सीरिया से उनका 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 फासला ज्यादा है। उसके अलावा इसमें हमारे अपने भी काफी हद तक करतूत शामिल हैं। हमने जो फाटा की जो सूरत हाल थी, हमने एक अपने मुल्क में एक ऐसे इलाके को रखा जिसकी हुकूमत ने कोई रिट नहीं नाफिज की, और इस इलाके को हुकूमत ने इसलिए इस सूरत हाल में रखा, इसमें कोई कानून नहीं नाफिज किया कि वहां से जो गैर कानूनी हरकतें हो रही थी उससे हुकूमत के बहुत सारे लोग शामिल थे और उसमें वो फायदा इकट्ठा करते थे। जहां से जो अभी अफगानिस्तान को अगर आप देख लें, वो दुनिया में काली चाय जिसको हम कहते हैं चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और आपको पता है कि अफगानिस्तान में कोई ये दूध दूध के साथ मिलाने वाली चाय कोई नहीं पीता, वो कावा पीते हैं। ये सब चाय जो अफगानिस्तान में जाती है ये फिर वापस स्मगल होकर पाकिस्तान में आती है, और ये लोगों ने जो फाटा को इस तरह रखा हुआ है वो सिर्फ इसीलिए रखा हुआ है ताकि इससे ये हमारे मुल्क के मायदीन एक वो पैसा इकट्ठा कर सके। अगर यहाँ पे टैक्स लग गया तो फिर ये टैक्स हुकूमत के खजाने में जाएगा, किसी हमारे और मुल्क के जो बाकी जो लोग हैं जो इन जो इस इन इन कार्रवाइयों को सपोर्ट करते हैं उनकी जेब में ये नहीं जाएगा। तो इसलिए फाटा को इन्होंने इस अंदाज से रखा जैसे कि इन्होंने अभी तक रखा हुआ है। अब वही हरकतें जो इन्होंने फाटा में की और लोगों को तालीम नहीं दी, वहां पे गैर कानूनी हरकतों के ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की, अब वो इनके पीछे आई हैं, और अभी जो जो कहते हैं कि अब वो आस्तीन का सांप जो अभी तक पाल रहे थे अभी वही आस्तीन का सांप इनको डस रहा है। यही
तो हालत अब आस्तीन का सांप कम अज कम आस्तीन से निकल गया है,
अभी आस्तीन का सांप इनके गले में लटका हुआ है।
सही, यानी अब आस्तीन में नहीं है, इधर कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा संगीन शाह साहब, आप हमने जो पिछले सेगमेंट में भी तذکرہ किया रियासत की या एस्टेब्लिशमेंट की, और स्पेशली आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जो संजीदगी होनी चाहिए या है इस वक्त, उसको सामने रखते हुए ज़र्बे अज़्ब आपके सामने है, फाइनेंशियल टेररिज्म का नाम दिया गया है, कराची के हालात को पस मंजर में अगर आप देखें जो ऑपरेशन हो रहा है उसको डील करने की जो कोशिशें हो रही हैं, पॉलिटिकल करप्शन को डील करने की जो कोशिशें हो रही हैं, इस तनाजुर में क्या ये तवक्को रखी जा सकती है कि हमारे सामने 2016 में जब 2015 के हालात की बुनियाद पर इंडेक्स सामने आएगा तो पाकिस्तान की पोजिशन बेहतर होगी?
बिल्कुल भी नहीं बेहतर होगी, और 2016 को तो छोड़े, 3016 में भी पाकिस्तान की हालत बेहतर नहीं होगी। मैं आपको 1000 साल की बात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आर्मी का काम नहीं है कि वो जाके फाटा में हुकूमत क्रिएट करे, ये हुकूमत का काम है, फेडरल हुकूमत का काम है। कराची के अंदर जिन जिन लोगों की ये जिम्मेवारी है कि वो कराची के हालात को बेहतर करें, वही लोग जो है कराची के हालात को तबाह बर्बाद कर रहे हैं।
लेकिन चेज तो किया जा रहा है, इसी रेफरेंस में उनको चेज किया जा रहा है, उनके ऊपर दबाव जरूर है उन तमाम पोलिटिकल फोर्सेस।
पाकिस्तान आर्मी का یہ کام نہیں ہے, یہ فیڈرل حکومت کا اور پروونشل حکومت کا کام ہے. فاٹا میں فیڈرل حکومت کا کام ہے, کراچی میں پروونشل حکومت کا کام ہے, اور پروونشل حکومت میں جو دو پارٹیاں اکثر شامل رہی ہیں پیپلز پارٹی ایم پی ایم, وہی دو تو اس آپریشن کا ٹارگیٹ ہیں. تو اب یہ آپریشن ختم ہو جائے گا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ فاٹا کی بات کر رہے ہیں, فاٹا میں ضرب عضب ہوا, بلکہ ضرب عضب ہوا اس سے پہلے جو کہ سارے المیزان آپریشن کے نیچے جتنے سارے آپریشن ہوئے ہیں. اب اس کے بعد کوئی لائے عمل ہے حکومت کے پاس؟ وہاں پہ آپ کا پولیٹیکل سسٹم جو تھا, پولیٹیکل ایجنٹ کا سسٹم جو تھا, وہ اس نے تو ان سارے حالات کو جنم دیا. پولیٹیکل ایجنٹ سسٹم وہاں پہ ناکام ہو چکا ہے. آپ نے جو وہاں کے لوکل ٹرائبل سسٹم تھا اس کو طالبان نے ٹوٹلی ریڈیکیٹ کر دیا. جو آپ کے ملک وغیرہ تھے جن کے ذریعے پولیٹیکل ایجنٹ قبیلوں کو قابو کرتا تھا, وہ ٹوٹلی ختم ہو چکا ہے. فوج نے ابھی وہاں پہ امن و امن تو قائم کر دیا. کیا آیا حکومت کے پاس کوئی ایسا فریم ورک ہے جس کے ذریعے وہ فاٹا کو آگے چلائے گا؟ مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا.
کامران بخاری صاحب سے پوچھتے ہیں, بخاری صاحب آپ کا انالیسس کیا ہے 2016 میں؟ ان کا جو مایوسی ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک ریزن رکھتی ہے, لیکن کیا لگتا نہیں ہے آپ کو کہ دوسری طرف جو پلاننگ ہے یا جو سنجیدگی ہے اس میں یہ تمام پہلو سامنے ہیں کہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی کیسے ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے, اور اسی طرح فاٹا کے اندر آپریشن بند کرنے کے بعد وہاں پہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کس نوعیت کی ہونی ہے, وہاں پہ گورننس کس نوعیت کی دینی ہے؟ تو اب چونکہ یہ ایک بگ ڈیبیٹ کا, گریٹ ڈیبیٹ کا حصہ بن چکے ہیں, تو کیا توقع رکھی جانی چاہیے کہ حالات پہلے کی نسبت بہتر ہوں گے 2016 میں خاص طور پہ؟
دیکھیں حالات ہمیشہ, مطلب اگر تو کوئی پروگرس ہوتی ہے تو وہ بتدریج ہوتی ہے, انکریمنٹل ہوتی ہے, تو اس لحاظ سے پروگرس ہوتی ہے. لیکن کیا وہ سبسٹنٹیو ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی پینلسٹ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ سبسٹنٹیو جو پروگرس ہے وہ ہم اس کی آس تبھی لگا سکتے ہیں کہ جب ڈیموکریٹک فورسز پولیٹیکل ملیشیاز نہیں رکھیں گی. ٹھیک ہے, فاٹا کے اندر وہ مین اسٹریم پارٹیز حکومت بنا رہی ہے نا. پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت کوالیشن گورنمنٹ رن کر رہے تھے, اب اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کی حکومت ہے اور مختلف صوبوں میں جو ہے مختلف پارٹیوں کی حکومتیں ہیں. اگر وہ پارٹیاں, وہی پارٹیاں جن کے ذمہ داری حکومت ہے, سیکیورٹی ہے, ملک کی باگ دوڑ سنبھالنا ہے, اگر وہی پولیٹیکل ملیشیاز کراچی میں جو ہے نا رکھے ہوئے ہیں, تو وہ کیسے جو ہے اپنا ملیٹنٹ گروپس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کال آف فیل میں تضاد ہی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک آپ کی مطلب اگر آپ فاٹا کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, فاٹا کو فیڈریشن میں لانا چاہتے ہیں, اگر فیڈریشن کے اندر ہی پرابلمز ہیں کہ جہاں کراچی جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے, جو گیٹ وے ہے پاکستان کا, جو کہ پاکستان کا اکنامک ہب ہے, وہ اگر وہی وہاں پر ہی آپ جو ہے فائنینشل ٹیررزم اور پولیٹیکل ملیشیاز اور آرگنائزڈ کرائم, ان کے تانے بانے ٹیررزم سے ملتے ہیں, تو آپ جو ہے کراچی کو میں یہ کام چل رہا ہے تو فاٹا میں آپ کیسے؟
لیکن کامران دیکھیں اس سارے پروسیس کے اندر جو ایک اور تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ کہ پبلک, عام لوگ, ووٹر خاص طور پہ, جو پھر پولیٹیکل پارٹیز کی مجبوری بھی ہے, وہ بھی آن بورڈ نظر آتا ہے, وہ بھی اس میڈیا کے اس دور کے اندر وہ بھی کافی انگیج ہے اور انفارمڈ ہے. تو تبدیلی کسی ہر دو اطراف سے جو ہے وہ آ سکتی ہے یا اس کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟
جی توقع ضرور, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں بہت آپٹمسٹک ہوں پاکستان کو لے کے مجموعی طور پہ, بلکہ بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ کچھ زیادہ آپٹمسٹک ہیں, لیکن دیکھیں بات ساری اتنی ہے کہ جہاں آپٹمزم ہونا ضروری ہے وہاں پر ایک ریئلزم بھی ہونے کی بڑی ضرورت
ہے. ضروری ہے بالکل
کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں صرف کہہ رہا ہوں کہ پری ریکوزٹ کیا ہے, کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہو نہیں سکتا, میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک سیاسی پارٹیاں جو مین اسٹریم اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں, اگر وہ پولیٹیکل وائلنس سے اپنے آپ کو,
لیکن کامران یہ پولیٹیکل وائلنس ایک شہر کی حد تک ہے, پورے ملک میں نہیں ہے, ایک شہر کی حد تک ہے, اور وہاں پہ بھی اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. وہی پارٹیاں جن کا ووٹ بینک باقی صوبوں کے اندر ہیں وہ اس طریقے سے آپریٹ نہیں کرتی ہیں.
ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ نوعیت جو ہے کراچی کے حالات کی باقی ملک سے مختلف ہے, لیکن باقی ملک کے اندر شاید اس لیول کے وائلنس نہیں ہے, لیکن یہ پھر بھی ہے کہ جب تک آپ ایک اقدار کی بات کی جا رہی ہے, جب تک آپ جو ہے ایک ویلیو ہے کہ بھئی ہم ایک مہذبانہ طریقے سے سیاست کریں گے, ٹھیک ہے, اسٹیٹ آف نیچر میں ہم نہیں جانا چاہتے, ہم سول سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں, تو اگر یہ چیز آپ جو ہے ایک ملک ایک حصے میں نہیں کر رہے تو دوسرے حصے میں آپ اس کو نہیں اجاگر کر سکتے, کیونکہ وہ اس طرح کی اس کی ریزنینس نہیں ہوتی, آپ جو ہے لوگوں کو جو ہے قائل نہیں کر سکتے جب آپ کے پاس مورل ہائی گراؤنڈ نہیں ہے.
آخری سوال اس سیگمنٹ کا, اس کو ہم وائنڈ اپ کریں گے, آپ کے خیال میں پاکستان کی ریاست کیا کرے کہ اس کی پوزیشن جب آئندہ رپورٹس آئیں, آئندہ انڈیکس ہمارے سامنے آئیں پیسفل ملکوں کے, تو پاکستان بہتر پوزیشن پہ ہو؟ مختصراً
मैं तो कहूंगा कि जो वो काम कर रहे हैं, जो बेड़ा उठा रखा है, उसको संजीदगी से और सिद्के दिल से और अपना ऑनेस्टी के साथ आगे लेके चलें और अपने आप को मजीद फाल करें और थिंक आउटसाइड द बॉक्स करें कि, और उसमें यह है कि जो रवायती तरीके हैं उनसे जो है उनसे भी आगे बढ़ें और देखें कि उनके पास क्या वसाइल हैं। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, ना ह्यूमन ना मटेरियल, उनको बरूए कार लाना है और उनको जो है अपना बड़ी लगन के साथ और मेहनत के साथ करना है।
संगीन शाह साहब, इसी सेगमेंट को वाइंड अप कीजिएगा। आपके ख्याल में क्या करे पाकिस्तान की रियासत की, आपका आपकी जो मायूसियाँ बड़ी जेन्युइन है, जैसे हमने कहा कि वो एक रियल चेक भी रहना चाहिए, साथ साथ रियलिटी चेक रहना चाहिए, क्या किया जाए तो आपके ख्याल में आपकी ओपिनियन बदल सकती है और थोड़ी हम पॉजिटिव तवक्कुआत रख सकते हैं?
जहाँ तक पाकिस्तान की रियासत का ताल्लुक है तो सोलत मिर्जा और उज़ैर बलोच वाले जैसे लोगों को पालने वालों से मुझे कोई तवक्को नहीं है। ये सोलत मिर्जा और उज़ैर बलोच तो वो लोग हैं जो कि सामने आकर अभी बातें कर रहे हैं, इसके पीछे जो जो दरिंदे बैठे हुए हैं उनको तो अभी हमें पता नहीं कि और कौन कौन से दरिंदे बैठे हुए हैं। मुझे पाकिस्तान की रियासत से कोई तवक्को नहीं है। मैंने आपको पहले 1000 साल का फ्रेमवर्क दिया था, मैं उसको 2000 साल बना दूंगा। हालात लोग कहते हैं कि वक्त के साथ बेहतर होते हैं, कोई वक्त के साथ हालात बेहतर नहीं होते, हालात खराब भी होते हैं। पाकिस्तान आपके सामने है, 1960 की दिहाई में पाकिस्तान दुनिया का छठा मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क था, अब इसकी हालत को देखें। कतर की यूएई की एयरलाइन को और सिंगापुर की एयरलाइन को पाकिस्तान की पीआईए ने बनाया था, पीआईए।
लेकिन देखिए ना, उसकी रिजिलियंस को अप्रिशिएट एक्नॉलेज भी तो किया जाता है ना, एक
मैं जरदारियों को और लोगों को कोई अप्रिशिएशन करने की यानी बैठे, मेरा अपना पर्सनल
नहीं, बिल्कुल मैं कौम की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर
मुझे कोई उम्मीद नजर आ रही है तो मुझे वो उम्मीद लोगों की अवाम के में बेदारी की सूरत में नजर आ रही है।
एग्जैक्टली, मैं इसी तरफ आ रहा था कि लोगों के अंदर एक जो रेजिलियंस है,
फिर कुछ हो सकता है, इसके अलावा कुछ उम्मीद मुझे नजर नहीं आ रही। मैं किसी को मुफ्त की डोरियां सुनाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हुआ, माफी चाहता।
बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहेगा, एक चंद सेकंड की ब्रेक लेते हैं हमारा अगला सेगमेंट और आप दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ होंगे जिसमें हम बात करेंगे फ्रांस और सऊदी अरेबिया उनके दरमियान दिफाई और जोहरी नौयत के मुआहदे और गुज़श्ता रोज जो दहशतगर्दी के हवाले से एक बड़े वसी खत्ते में कार्रवाइयाँ हुई और दर्जनों अफराद उसमें मारे गए, उस पर एक तायराना नजर डालेंगे एक ब्रेक के बाद।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
What's up पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अंजुम मेरल गिल और अरीशा खान, जबकि स्टूडियो इंजीनियर्स हैं हमारे साथ टी एन वॉन और मिस्टर चार्ल्स मॉक। ये प्रोग्राम आप वॉइस ऑफ अमेरिका से बराह रास्त सुन भी रहे हैं, मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पे और हमारी वेबसाइट पे बराह रास्त इसे स्ट्रीम होता भी आप देख सकते हैं urduvoa.com पे। प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे सऊदी अरब और फ्रांस उनके दरमियान अरबों डॉलर की मालियत के दिफाई और जोहरी नौयत के मुआहदे हुए हैं और इसमें यह बताया जा रहा है कि बड़ा वसी एक लिस्ट है हमारे सामने जो सऊदी अरब खरीदना चाह रहा है या जो उसने खरीदेगा फ्रांस से। 23 हेलीकॉप्टर्स हैं, 50 एयरबसेस हैं और इसके अलावा जौहरी रिएक्टर उसकी तनसीब का काम जो है वो भी फ्रांस के ज़िम्मे है। जौहरी फजले को ठिकाने लगाने और हिफाजती इकदाम से मुतालिक जो तरबियत है उस पर भी बातचीत जारी है फ्रांस के साथ। सऊदी अरेबिया ने हालिया दिनों में एक सरबरा कॉन्फ्रेंस भी कराई थी जिसमें ख़ासतौर पर फ्रांस के प्रेजिडेंट को इंगेज किया गया था, तो सऊदी अरेबिया और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात में हमें खासी गर्मजोशी बढ़ती नजर आती है। हम जायजा लेंगे कि सऊदी अरेबिया की दिफाई जरूरियात हैं क्या और उन जरूरियात को पूरा करने के लिए उसका ये जो एक अग्रेसिव अप्रोच है उसके क्या असरात हो सकते हैं उस खत्ते के ऊपर आर्म्स रेस पे खासतौर पे। कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और संगीन शाह साहब। कामरान बुखारी साहब, इसी तमीद में आप फ्रांस सऊदी अरेबिया इन हालिया डील्स इसको एनालाइज कीजिएगा।
देखिए, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि फ्रांस जो है वो रवायती तौर पे सऊदी अरब के बहुत करीब रहा है। अगर आप देखें तो लबनान में इनके जो है वो मफादात मिलते जुलते हैं और ये वो जो वहाँ पर एक जियोपॉलिटिकल डिवाइड है लबनान में, ये वो उसके एक ही साइड पर हैं, दूसरी जानब सीरिया और ईरान और रूस हैं।
सही
तो एक तो ये हुआ, दूसरा ये है कि ऐसे दौर में जबकि अमेरिका के साथ सऊदी अरब के जो मफादात हैं उनमें डाइवर्जेंस आ रही है, तो ये और भी अहमियत का हामिल होता है। 2009 में जिस वक्त अमेरिका ने सऊदी जो हुकूमत है उसको सैटेलाइट जो है इंफॉर्मेशन देने से इनकार किया था ताकि वो यमन में जाके हूती बागियों के ऊपर कार्रवाई करें, ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ,
जी
तो उस वक्त फ्रांस ने वो टेलीमेट्री वो जो इंफॉर्मेशन है वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी, जिसके बाद मुसल्ला फौज जो सऊदी अरब की है उन्होंने हूती ठिकानों पर हमला किया था और वो उसको जो है ना दबाने की उस वक्त कोशिश की थी। तो कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। तो जहां तक अब इस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, देखें इसमें भी कोई खास बात नहीं है, ये एक रवायती तरीका है सऊदी अरब का कि वो बहुत बड़ी शॉपिंग स्प्री पे जाते हैं जब भी, क्योंकि पैसा उनके पास बहुत है, अपने डिस्पोजेबल रेवेन्यू बहुत है, तो उस वजह से वो बड़े पैमाने पे हथियार खरीदते हैं और हथियार, और उनके अगर आप उनकी इन्वेंट्री चेक करें तो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी में शायद ही कोई ऐसा जो है हथियार है जो उनके पास नहीं होगा। बहुत ही एक मतलब उनके पास जदीद तरीन हथियार तो अपना बर्तानिया से भी हैं, अमेरिका से भी हैं, बल्कि जो है रूस से भी लेने देने की कोई बातचीत की जा रही है, और फ्रांस से तो वो लेते रहते ही हैं। तो ये तो एक बात। अब तीसरी जो इशू है वो ये है कि देखें जहां तक जौहरी प्रोग्राम का ताल्लुक है, और इवन अगर आप कन्वेंशनल वेपन्स को ले लें, तो सऊदी अरब का अलमिया यही रहा है कि सऊदी अरब के पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है कि जो इन मटेरियल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके तो अब मुल्क के दिफा में जो है वो उसको काम उसमें लाया, उसको उस पर्पस के लिए यूज किया जाए। अच्छा, अब इसी वजह से हमने देखा कि उन्होंने हाल ही में जो यमन में जंग है उसमें पाकिस्तान से फौजी में इमदाद मांगी, फौजी इमदाद में उन्होंने जो है हार्डवेयर कम सॉफ्ट ह्यूमन वेयर ज्यादा उनकी जरूरत थी, इसी तरीके से इजिप्ट से उन्होंने मांगा है। तो अगर आप इसी रियलिटी को जौहरी प्रोग्राम पे डाल दें तो देखें जब तक आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो आप जो है, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप जाके खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, खरीद
सही
जरूर लेंगे, लेकिन इशू ये है कि आप चलाएगा कौन और उसको आप किस तरीके से जो है सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, या वो आप लेके तो किसी जगह पे रख देंगे।
जी संगीन शाह साहब, सऊदी अरब की ज़रूरियात क्या हैं और उसका ये जो एक अग्रेसिव अप्रोच है, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इक्विप करना है, इससे बाकी खित्ते पे क्या असरात पड़ सकते हैं?
जहां तक सऊदी अरब का जो मिलिट्री स्टांस है वो विजावी ईरान, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि आप जब भी आप किसी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को देखते हैं आप उसको वो उसकी प्लानिंग को उसके मद मुकाबिल की प्लानिंग के साथ आप मैच करके उसके स्ट्रेटेजिक मूव्स को आप देखते हैं कि इसमें रैशनैलिटी और इसमें लॉजिक क्या है। जहां तक ईरान का ताल्लुक है, ईरान जो है वो अपने काफी हद तक वो जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ा चुका है, और इस हद तक बढ़ा चुका है कि जिसमें इंटरनेशनल बरादरी की वो काफी उससे तश्वीश थी, और उन्होंने अभी जो करीबी जो नेगोशिएशन हुई ये सब उनका एक 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 एक, एक अब वो आपके सबके सामने है। सऊदी अरब उसको देखते हुए, सऊदी अरब को ये एहसास है कि उसके सऊदी अरब में और उसके आसपास जो चंद ममालिक हैं खलीज के, उनमें काफी बड़ी हद तक शिया आबादी रहती है, और सऊदी अरब को ये अफसोस ये खदशा हर वक्त लाहिक होता है कि ईरान उन शिया आबादियों को उन ममालिक में उनकी जो सुनी हुकूमतें हैं उनके खिलाफ ला खड़ा करेगा। इस तरह अगर हम देखें एक और फिनोमिनन अगर हम देखें, जिसको अगर हम ये कहें कि शिया पैन शियाइज्म जो अगर हम देखें वो आपको उभरता हुआ नजर आ रहा है, ईरान जहाँ पे भी शिया हुकूमतें या शिया आबादियां मौजूद हैं वहां पे उनका असर रसूख हम सबको काफी साफ दिखाई दे रहा है। इस डर से और ईरान की न्यूक्लियाई हथियारों को हासिल करने के जो शुभात हैं इनके डर से सऊदी अरब ने जो है अपने 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 लिए भी एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करने को शुरू करने की जो कोशिश की है। इसमें कहते हैं कि 16 न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं वो फ्रांस से खरीदे जाएंगे, और उनको कोई $80 बिलियन से ऊपर तो सिर्फ इनके न्यूक्लियर रिएक्टर से ऊपर जो जो खर्चा होगा। इससे पहले फ्रांस ने कतर और मुतहदा अरब अमारात के साथ भी न्यूक्लियाई मुआहदे किए हैं, तो सऊदी अरब का न्यूक्लियाई मुआहदा जो है ये कोई पहला मुआहदा नहीं है, इनफैक्ट इसी इलाके में तीसरा मुआहदा है फ्रांस का। और जहां तक न्यूक्लियाई रिएक्टरों की बात है, न्यूक्लियाई रिएक्टर से कोई से ये मकसद नहीं है कि कोई ऑटोमेटिकली किसी मुल्क को एक न्यूक्लियर हथियार भी मिल जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार के लिए तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक न्यूक्लियर फिजा मटेरियल जिसको कीमियाई मटेरियल कहते हैं, दूसरा बम का बनाने का डिजाइन, जिससे बम को उस मटेरियल को एक बम के में डाल के एक एक एक, एक तरीके के साथ उसको उसको एक्सप्लोर किया जाए, और तीसरा डिलीवरी मैकेनिज्म कि उसको किसी जगह पे अपने हदफ तक पहुंचाने के लिए आपके पास कौन सा डिलीवरी मैकेनिज्म है। तो अगर हम यहाँ से ये खतरात शुरू कर दें कि अभी सऊदी अरब जो है कल परसों को अपनी जेब से कीमियाई पिस्तौल निकाल के लोगों को गोलियां मारना शुरू कर देगा, तो ये खतरात बेचा है। किसी मुल्क को कीमियाई हथियार हासिल करने के लिए काफी लंबा अरसा उनको दरकार होता है, इसीलिए उन्होंने जब आप ईरान के कीमियाई हथियारों को अगर आप देखें उसके ऊपर उन्होंने जो पाबंदियां लगाई हैं, उन्होंने इस अंदाज से पाबंदियां लगाई हैं कि अगर ईरान अगर कीमियाई हथियार बनाना भी चाहे तो उसको 2-3 साल कम अज कम लगेंगे।
मैं क्विकली इसी से जो दूसरा जुड़ा हुआ हिस्सा था उस पर भी बात करना थी, एक एक मिनट में अपने दोनों पैनलिस्ट को दूंगा। गुज़श्ता रोज जुमे को बहुत एक वाइड रेंज थी जिसको टारगेट किया मुख्तलिफ नॉन स्टेट एक्टर्स ने, मुख्तलिफ मुल्कों में अगरचे ये कार्रवाइयाँ हुई, ट्यूनिस, कुवैत, फ्रांस, ट्यूनिस में कम अज कम 39 लोग जो है वो मारे गए, कुवैत में हमला हुआ, फ्रांस के अंदर दहशतगर्दी का वाकया हुआ, नॉन स्टेट एक्टर्स का इतने बड़े पैमाने पे करना, इसमें ये महज इत्तेफाक है कि एक दिन ये इतनी कार्रवाइयां हुई या कहीं पे कोई कोऑर्डिनेशन भी नजर आती है? कामरान,
देखिए कोऑर्डिनेशन जो है मैं नहीं समझता कि इतने बड़ी ज्योग्राफी पे हो सकती है। देखें जो इनका लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये महज इत्तेफाक है। देखें रमजान के महीने में अक्सर जो है माजी में हमने देखा तो जो इस तरह की जिहादी कुव्वतें हैं उनकी कार्रवाइयों में जोर पकड़ती हैं और जो है ना तेजी आती है। तो ये हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे दाइश की क्यादत ने ये कहा हो कि भाई हम चाहते हैं कि एक ही दिन मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए जाएं, तो हो सकता है कि ट्यूनिसिया और कुवैत के हमले में कोई जो है ना आपस में मुसलत हो, लेकिन फ्रांस का हमें नहीं पता कि वो जो बिहेडिंग हुई थी वो कब हुई थी और वो मतलब क्या उसकी टाइमिंग थी, तो उस हमें जो है ना हमारे पास पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर ये है कि अगर आप आपने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले लिया है कि आप साइमल्टेनियस पैरेलल अटैक्स करेंगे ओवर अ वाइड ज्योग्राफी, तो क्वेश्चन ये है कि ये आपका इंटेंट है लेकिन आपके पास कैपेबिलिटी है, क्योंकि डिसीजन लेने और एग्जीक्यूशन के दरमियान बहुत सारे मराहल होते हैं जिनको सक्सेसफुली आपने जो है वो उससे गुजरना होता है ताकि आप वो हमला कर सकें। उसमें बहुत सारे वसाइल दरकार हैं जो है ना ह्यूमन एंड मटेरियल, और बहुत सारे जो है रिस्क को आपने मिटिगेट करना होता है कि कहीं आप पकड़े ना जाएं, आप क्योंकि आप ऑपरेट कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के रेडार पे हैं तो पकड़े जाने का भी बहुत ज्यादा जो है ना वो होता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इत्तफाक का भी एलिमेंट है और प्लानिंग का भी एलिमेंट है, लेकिन ये कहा जाए कि जी ये कोई बहुत बड़े पैमाने पर कोई
अनप्रेसिडेंटेड
मैं उससे गुरेज करता हूँ।
बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी, आपने हमें ज्वाइन किया, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया, आप हमारे साथ थे। हमारा रब्ता मुनकता हो गया, हमारे साथ थे संगीन शाह साहब और एसोसिएट विद काउंटर इंसर्जेंसी रिसर्च ग्रुप डिपार्टमेंट ऑफ वॉर स्टडीज किंग्स कॉलेज लंदन से हमारे साथ थे। इस सेगमेंट को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे और प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, उसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत पे जो कर्जों पे बज़ाहिर ज़्यादा इन्हसार करती हुई नज़र आ रही है। IMF की तरफ से एक और बड़ी किस्त उसकी मंजूरी दी गई है पाकिस्तान के लिए, इसका हम जायजा लेंगे एक ब्रेक के बाद।
व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa, हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्सएप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर है हमारे साथ अरीशा खान और जमहरल गिल। बात हम करेंगे प्रोग्राम के हिस्से में पाकिस्तान की मईशत पे, ज़्यादातर उसका इन्हसार कर्ज़ों पे रहता है रहा है, और अगरचे हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट बहुत सारे भाईरीन ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अपने तौर पे लंबी चौड़ी असलाहत की ज़रूरत है, अपनी इकोनॉमी को रेगुलेट और डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, और अपने टैक्सेशन उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और अपना जो फिस्कल डिसिप्लिन है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन कर्ज़े वो भी साथ साथ आम हैं बहुत सारे लोगों के नज़दीक, और लोग ये कहते हैं कि अगर आप ये इंजेक्ट करेंगे, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, तो इसमें इम्कान ये रहता है कि कोई भी गिरती हुई मईशत वो अपने आप को संभाल सकती है। लेकिन अगर कर्जे उनका ताल्लुक जो है वो सिर्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर हो तो ये कितने प्रोडक्टिव हो सकते हैं, किस तरीके से इनको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ये एनालिसिस करेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना नवाब साहबा, इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ वाबस्ता हैं, वाशिंगटन बेस्ड हैं। तहमीना बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया है। 50 करोड़ 60 लाख डॉलर की एक और किस्त अप्रूव हुई है बुनियादी तौर पे, और मेरा सवाल भी एक जेनेरिक है आपसे कि ये इंजेक्शंस क्या वाकईतन बहुत जरूरी होते हैं उन मईशतों के लिए जो बज़ाहिर कमजोर पड़ रही हूँ?
اچھا السلام علیکم. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام پہ بلانے کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ سب سے پہلے میں یہ چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ لون کن کنٹریز کو دیتا ہے. عموماً جو ایک کرائیٹیریا ہے کسی بھی کنٹری کو لون دینے کا, اس کو یہ کہ وہ ایسی صورتحال سے اس کو وہ گزر رہی ہوتی ہیں کہ جن کو بیلنس آف پیمنٹ نیڈس کہا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کو کسی بھی اور کیپٹل مارکیٹ سے ان کی پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے یا جو بھی ان کے حالات ہیں اس کی وجہ سے ان کو فنڈنگ نہیں مل رہی ہوتی, اور وہ جو ہیں نہ انٹرنیشنل پیمنٹس وہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی سیف ریزروز بہت زیادہ بچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اپنے جو ریزروز کے اندر. تو سب سے پہلا کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے جب بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ کسی کنٹری کو اپنی لون دیتی ہے. اب یہ ہے کہ یہ جو لون عام طور وہ عموماً ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شارٹ ٹرم ریلیف پرووائڈ کرنا کسی بھی کنٹری کو. تو جب بھی کوئی کنٹری اکنامک کرائسس سے گزر رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس کی آپ کو پتا ہے کہ جو کرنسی ہے وہ انڈر اٹیک ہوتی ہے فورن مارکیٹ میں, یا یہ ہے کہ اس کے انٹرنیشنل ریزروز ختم ہو رہے ہوتے ہیں, یا اس کی جو کمپنیز ہیں یا اس کی فرمز جو ہیں وہ بینکرپسی ڈکلیئر کر رہی ہوتی ہیں. تو اب اس وقت اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کنٹری کی اکانومی کو یہ سپٹمبر
1999
کیا تھا یہ پروگرام جس کو کہا جاتا ہے پی آر جی ایف پاورٹی ریڈکشن اینڈ گروتھ فیسلٹی, جس کا ممبر پاکستان بھی ہے, اور یہ بیسکلی جو گروتھ انیشیٹیوز ہوتے ہیں کنٹری کے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے جو آپ نے کہا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے لیے لون دیا جاتا ہے, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جو وقتی کرائسس میں آئی ہوئی ہوتی ہے کنٹری جب آپ کوئی بھی لون دیتے ہیں تو اس کی زیرو انٹرسٹ کے اوپر یا بہت ہی کم انٹرسٹ کے اوپر یہ لون پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور جو گروتھ انیشیٹیوز ہیں اور جو گورننس ایشوز ہیں ملک کے, جیسے کرپشن ہو رہی ہے, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ایک پروگرام اور یہ شروع کیا گیا ہے, اور اس کے انڈر پاکستان ہے جس کے تحت انہوں نے یہ جو ہے وہ لون
ہم یہ دیکھتے ہیں تہمینہ کہ پاکستان میں خاص طور پہ بڑی جو سکسیسو گورنمنٹس رہی ہیں وہ اس بات کو بھی اپنے کریڈٹ میں لیتی ہیں کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اگر ان کے لیے لون اپروو کر رہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کریڈینشلز بہتر ہوئے ہیں, ہمارے جو پراسپیکٹس ہیں اکانومی کے وہ بہتر ہوئے ہیں, اس بنیاد پہ ہمیں لون مل رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں ان فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی طرف سے الٹیمیٹلی اس کی جو قیمت ہے وہ ایک عام آدمی دیتا ہے یا اس کا بوجھ عام آدمی پہ زیادہ پڑتا ہے کیونکہ سبسڈیز کم ہو جاتی ہیں تو بجٹ ان کا جو گھر کا وہ اور زیادہ سکرو ہو جاتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟
بالکل, یہ بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دیکھیں ہر جگہ پہ جب آپ پیسہ اتنا دے رہے ہیں تو کیچ تو ہے اس کے اندر, اور پاکستان جیسا ملک جو کہ قرضوں میں اتنا دبا ہوا ہے اس سے یہ امید نہیں ہوتی ہے ڈیولپنگ آرگنائزیشنز کو کہ وہ قرضوں کو واپس کر دیں گے. لہٰذا وہ پھر عموماً جب وہ جو ملک بورو کرتے ہیں ان کے اوپر اکنامک پالیسیز امپوز کرتا ہے آئی ایم ایف, تاکہ ان سے وقتی طور کے اوپر یا لانگ ٹرم قرضہ وصول کیا جا سکے. تو اب اس کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈومیسٹک گڈز ہوتے ہیں آپ کے, جو آپ کے اپنے ہیں, ان کے اوپر آپ کو ٹیکس انکریز کرنے پڑتے ہیں, اور جو آپ کے جو ایکسپورٹ ہے یعنی جو آپ کے ٹریڈ ٹیکسز ہیں وہ آپ کو کٹ کرنے پڑتے ہیں, اور آپ کو ایکسپورٹ چیپ ریٹس کے اوپر کرنا پڑتا ہے. اب اس کی وجہ سے جتنے بھی جو بزنسز ہیں کسی ملک کے, ظاہر ہے ان کے اوپر یہ چیز اثر انداز ہوگی, اور ایونچولی وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ نیڈز بیٹر ہو رہی ہیں, لیکن وہ ایکچولی ورس ہو جاتی ہیں, اور ایک ملک ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے کہ جہاں اس کو بار بار جو
لون لینا پڑتا ہے. تہمینہ آخری سوال میں کرنا چاہوں گا, لوگ یہ بھی کہتے ہیں جو قرضوں پہ کرٹیسزم آتا ہے نا, تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جیسا ملک بھی قرضے لیتا ہے, تو ان معیشتوں کا یعنی امریکہ کی معیشت بھی آپ کے سامنے ہے, پاکستان ایک ڈیولپنگ یا انڈر ڈیولپ ملک ہے, تو وہ جب قرضے لیتے ہیں تو اس میں کیا بنیادی فرق کیا ہے؟
بنیادی فرق یہ ہے کہ امریکہ جیسے ملک کو کیپٹل مارکیٹس, میجر کیپٹل مارکیٹ سے قرضہ مل جاتا ہے, اور وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو گورننس بانڈز ہوتے ہیں, اپنے ملک کے بانڈز ہوتے ہیں, ان کو وہ بیچ کر وقتی قرضہ لیتے ہیں, اور اس کے بعد دے بائی بیک دیٹ بانڈز. لیکن جب آپ ڈیولپنگ انسٹیٹیوشنز کسی ملک کو یا کسی غریب ملک کو قرضہ دیتی ہیں تو آپ کے پاس ریزروز میں کچھ نہیں ہوتا ہے, آپ کو اپنی پالیسیز وہ دیکھیں, اس کو اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز کہا جاتا ہے سیپ, کہ جس کی وجہ سے آپ غریبوں کو, جیسے آپ فارمرز ہیں یا آپ کے کسان ہیں, وہ جو جتنی چیزیں بنائیں گے وہ آپ لوکل کنزمپشن کے لیے یوز نہیں ہوتی ہیں, جو آپ کا روٹی کپڑا جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہیں, غریب لوگ بےچارے اس کو سفر کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ آپ بنا رہے ہیں یہ تمام کا تمام آپ چیپ ریٹ کے اوپر امیر ملکوں کو آپ ایکسپورٹ کریں تاکہ ہمیں آپ کا قرضہ واپس مل سکے, کیونکہ امریکہ جیسے ملک کی طرح آپ بائی نہ آپ کے پاس کوئی ڈیٹ ریڈکشن پلان ہے نہ آپ کے پاس ریزروز ہیں کہ جس کی وجہ سے.
بہت شکریہ تہمینہ, مجھے یہاں پہ اپنا شو جو ہے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں تہمینہ نواب. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ عمر گل اور عریشا خان, جبکہ اسٹوڈیو انجینئرز ہیں ٹی این وان اور مسٹر چارلز مارک. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.